हरे कृष्ण। पहला स्कंद 13वां अध्याय धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत उवाच विदुरस तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा राधास्तिना पूरं तया वाप्त विविच्छतः। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा राधास्तिना पूरं तया वाप्त विविच्छतः। विदुरस् तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिना पूरं तया वाप्त विविच्छितः। अनुवाद देखिए। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मगति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे इच्छा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि विदुर महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे। महाराज पांडव की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए। ये यमराज के अवतार थे और मंडक मुनि के शापग्रस्त होने के कारण इन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार राज्य पुलिस ने कुछ चोर पकड़े और मंडुक मुनि की कुट्टी के पीछे छुपे हुए थे। पुलिस के कर्मचारियों ने चोरों के साथ साथ मंडुक मुनि के को भी बंदी बना लिया और मैजिस्ट्रेट ने मुनि को भाले से भोंक कर मार डालने का आदेश दिया। किंतु जब भाला भोंका जाने वाला था तो उसका समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचा। जब मुनि ने उससे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज तिनके से चींटी को मार डाला था, इसलिए उसे यह कष्ट भोगना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यह यमराज की मूर्खता थी कि उसे बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतएव मुनि ने यमराज को यह शाप दे डाला कि वह शूद्र हो जाए। यमराज का यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात है, जो धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु का शूद्र भ्राता था। लेकिन भीष्म देव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र को अपने अन्य भतीजों के ही समान माना। कालांतर में विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर अपने पिता भीष्मदेव के भाई की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हुआ, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उसे पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। वह अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त था और वह उसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहता था। कुरुक्षेत्र के बंधु घाटी युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने भाई से अनुनय विनय की थी कि वह पांडु पुत्रों के साथ न्याय बरते, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा का यह व्यवधान पसंद नहीं था। अतएव वह विदुर का अपमान करता रहता था। इसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने के लिए मैत्रेय से उपदेश ग्रहण करने चले गए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासनां व्रजवधु वर्गीनया कपिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभुर्यतमिदं तथाकरहो न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसास्मरामि। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवेति। व्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरं श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम्।
चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधरुणबिंबफल धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति देवैस्तवे वेदे साङ्गपक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंध 13वां अध्याय जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र के द्वारा गृह त्याग। ये संवाद वहां से स्टार्ट होता है जब शौनक मुनि ने सुत गोस्वामी से महाराजा परीक्षित के जन्म कर्म और निधन के विषय में पूछा था, याद है ना। तो जब जन्म के विषय में उन्होंने बता दिया, जैसे हमने पढ़ा महाराजा परीक्षित के जन्म के विषय में कि किस प्रकार महाराजा परीक्षित के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रक्षा हुई, उसका वर्णन करने के बाद अब महाराजा परीक्षित के कर्मों का, अब कर्म कौन से थे उनके, यानी कलयुग दहन जिसे कलयुग को उन्होंने आने नहीं दिया, और निधन के विषय में बताने से पहले सूची यहां पर विदुर जी की कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि किस प्रकार विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र का उद्धार हुआ, और उसके बाद नारद जी का युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देना, फिर युधिष्ठिर महाराज का भीम, और फिर अर्जुन का प्रश्नोत्तर, और फिर अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने के बाद पांडवों के राज छोड़कर वैकुंठ जाने के, या वैकुंठ के लिए हिमालय जाने की, ये सब कथाएं पहले यहाँ पर 3 अध्याय में सूत गोस्वामी पूरी करेंगे, उसके बाद महाराजा परीक्षित के कर्मों का वर्णन करेंगे। तो इस अध्याय में विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र और नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दिया जाएगा। वास्तव में ये शास्त्र का परिपाठी है, ये शास्त्र का स्टाइल है कि कथा के द्वारा ही हम जैसे सामान्य भद्र जीवों को शिक्षा दी जाती है। वास्तव में इस ज्ञान की धृतराष्ट्र को आवश्यकता नहीं है जो विदुर उनको दे रहे हैं। ये धृतराष्ट्र कोई साधारण प्राणी नहीं है जो भगवान की लीला में सहयोग करते हैं, जिनको भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। ये सब तो भगवान की भगवान के विशेष परिकर्मण होते हैं जो भगवान की लीलाओं में सहायक बनने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। जैसे एक ही मंडली होती है, एक ही ग्रुप होता है, उसमें से कुछ हीरो बनते हैं, कुछ विलन बनते हैं और इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कोई भी, तो उसी तरह से जो भगवान की लीलाओं में सहायक होते हैं वो साधारण नहीं होते हैं, वो वास्तव में भगवान के परिकर्मण होते हैं। इसीलिए तो उनको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो भगवान के साथ मिलकर भगवान का उनको सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान का, हम जैसे साधारण प्राणी को भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं, जो जिनका मतलब भगवान इनके पुण्य इतने उदय नहीं हुए होते हैं, वो तो सारी जिंदगी तपस्या करते रहते हैं, भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन ये भले ही यहाँ संसार में दुष्ट व्यक्तियों की भूमिका क्यों न निभा रहे होते हैं, लेकिन वो साधारण जीव नहीं होते हैं, वो अवश्य भगवान के परिकर्मण होते हैं और भगवान इन्हीं के द्वारा हम सबको ज्ञान प्रदान कराते हैं। तो ये क्योंकि धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का मतलब होता है धृत, कहते हैं पकड़ना, मजबूती से किसी को पकड़ना, और राष्ट्र मतलब राज्य को। तो वास्तव में देखा जाए तो हम सब राज्य मतलब जो हमारी संपत्ति है इस संसार में, देखा जाए तो हर एक प्राणी अपनी संपत्ति को, अपने धन को, अपने घर को, अपने बच्चों को कितना प्रेम करता है, कितना आसक्त है, कितना जकड़े हुए है उसमें। तो ये वास्तव में ज्ञान हमारे लिए है कि ये भौतिक जगत के जितने भी बंधन हैं वो हमारे लिए अवश्य बंधन का कारण बनेंगे, और बारंबार इन बंधनों के अंदर जकड़े रहने के कारण हमें जन्म मृत्यु का चक्कर ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें इन सब का आकर्षण, इन सब का मोह त्याग कर अपने प्रेम को भगवान के चरणों में स्थापित करना पड़ेगा। वास्तव में यदि देखा जाए तो संसार के समस्त प्राणियों को मृत्यु के गाल में जाना है, मृत्यु की गोद में एक न एक दिन सबको जाना है। हम देखते हैं कि हम पूरे जीवन में केवल सफर करते रहते हैं, कोई कार चला रहा होता है, कोई ऑटो में बैठ रहा होता है, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई एरोप्लेन में, लेकिन क्या ये जीवन का चक्कर ऐसे ही बस चलते चलते रहना है? कोई तो ऐसा डेस्टिनेशन होगा जीव का कि जहां पर उसे जाकर विश्राम मिले, जहां पर उसे जाकर फिर बस कहीं चलना ना पड़े, वहीं पर आनंद हो, तो वो है भगवान का घर। तो इतने वेग से सभी जीव केवल मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, है ना? इस संसार में जो भी हैं, एक एक क्षण में हमारी मृत्यु की ओर हमारा कदम बढ़ना है। जितना भी समय हमारा गुजरता है, एक एक क्षण जो है वो हमें मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। लेकिन क्या ये मृत्यु अंतिम मृत्यु है, या इसके बाद पुनः हमें इस संसार में आकर पुनः मरना पड़ेगा? ये डिसीजन हमें लेना है इस संसार में कि हम अपने इस मृत्यु के बाद वापिस आना चाहते हैं या ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जो कि हमारा वास्तविक गोल है, जो कि हमारा वास्तविक जीवन का लक्ष्य है। तो ये केवल हमें शास्त्र ही समझा सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने इस जीवन को भी अंतिम जीवन बनाएं। यहाँ पर विदुर जी के विषय में बता रहे हैं, विदुर जी साक्षात यमराज के अवतार थे। इस विश्व में यम का मतलब होता है जो कंट्रोल है ना, जिन जिन चीजों पर हम कंट्रोल होता है यम, और राज का मतलब होता है जो बादशाह होता है। मतलब इस विश्व में भगवान के बाद जीवों को कंट्रोल करने वाले यमराज जी हैं, और ये यमराज भी जी इस संसार में उनको जन्म लेना पड़ा था क्योंकि उन यमराज जी से भी एक बार भूल हो गए थे। जैसा कि हमने अभी तात्पर्य में पढ़ा कि कुछ चोर थे, उन्होंने मंडूक मुनि के आश्रय लिया, उनको पता नहीं था लेकिन उनके ही कुटिया में आकर ठहर गए थे, और जो राजा के सिपाही उसके पीछे जा रहे थे तो उन्होंने उन चोरों के सहित मंडूक मुनि को भी गिरफ्तार कर लिया। और राजा जो था उसने यहाँ उनको सजा दी कि इनको भाल भोंग का मार दिया जाए। लेकिन क्योंकि मंडकुनी का बहुत बड़ा बड़ी तपस्या थी तो उनको इनसे असर तो नहीं हुआ वालों से, लेकिन वो डायरेक्ट पहुंच गई यमराज जी के पास और बोला, मैंने आखिर इस संसार में ऐसा कोई अपराध किया है क्या जिसके कारण मुझे यहाँ यातना सहनी पड़ी? मुझे मेरे अपराध के विषय में बताओ जिसके कारण तुमने मुझे यहाँ दंड दिया है। तो यमराज भी बहुत परेशान हुए और उन्होंने चित्रगुप्त को बोला कि आप देखो, इन्होंने अपने जीवन में या पिछले किसी जीवन में कोई ऐसा अपराध किया है? तब चित्रगुप्त ने बताया, हाँ, जब ये छोटे थे तो एक नोकीले तिनके से इन्होंने चींटी को मारा था, इसी अपराध का दंड ये इनको मिला है। तब मंडक मुनि ने बोला, तुम जरा मुझे शास्त्र खोल के ये तो बताओ कि कर्म का विधान कब से स्टार्ट होता है, कितनी उम्र कितनी आयु से कर्म का विधान स्टार्ट होता है और उस समय में कितना छोटा? तब यमराज ने कहा, हाँ, कर्म का विधान तो 5 वर्ष के बाद ही स्टार्ट होता है, परंतु आप उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए आपको ये अपराध नहीं लगना चाहिए था, इसका इस अपराध का दंड नहीं मिलना चाहिए था। तब मंडूक मुनि ने इनको यमराज जी को यह श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर जाके जन्म लो, तुम शूद्र बनो, तुम्हारी बुद्धि इतनी शूद्र की है कि तुम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि किसे अपराध की किसी सजा मिलनी चाहिए। तुमने मुझे इस जब मैं इतना छोटा था उस अपराध के कारण तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दिलवाया, तो तुम जाओ इस संसार में जाकर शूद्र के घर में उत्पन्न हो जाए। ये सब भगवान की लीला है। भगवान ये दिखाना चाहते हैं, एक तो कि भगवान की इच्छा से यमराज बीबी यमराज जी भी इस कुरुक्षेत्र के हस्तिनापुर के जो ये लीला हो रही थी उसमें भी भाग लें, और भगवान यमराज की भी इच्छा थी कि भगवान की लीला हो तो उसमें मैं भी एक भूमिका निभाऊं। भगवान के बहुत ही प्रिय मित्र प्रिय भक्त हैं विदुर जी। जब विदुर जी संसार में आए थे, हम जानते हैं भगवान से बहुत प्रेम करते थे और भगवान बगैर किसी नियुक्ति के उनके घर पर जाते थे। जब दुर्योधन के यहाँ पर भगवान शांति दूत बन के आए, दुर्योधन ने बहुत प्रकार के भोजन बनाए थे भगवान के लिए, परंतु भगवान ने कुछ स्वीकार नहीं किया और चले गए विदुर जी के पर। विदुर जी ने तो न्योता भी नहीं दिया था, परंतु बोला, नहीं, भोजन तो मैं विदुर जी के यहाँ पर ही खाऊंगा। ऐसे भगवान के प्रिय भक्त बने। और ये यमराज जी का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि यहाँ पर आकर उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो विदुर जी के जीवन में बहुत दुख थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहा। बार बार दुर्योधन उनका अपमान करता था, बहुत अपमान होता था उनका, क्योंकि उनकी कोई बात भी नहीं मानता था। वो मंत्री थे, महामंत्री थे, परंतु उनको कोई आदर नहीं दिया जाता था, उनकी कोई बात भी मानी नहीं जाती थी। ये कि विदुर जी के विषय में श्री प्रभुपाद जी ने हमें बताया, वास्तव में जब शांतनु जी का विवाह हुआ था सत्यवती से, तो उनके दो पुत्र हुए थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद की तो मृत्यु हो गई और उसके बाद विचित्रवीर्य का विवाह हुआ था अंबिका और अंबालिका के साथ, है ना, काशीराज जो अंबिका और अंबालिका थी उनके साथ विवाह हुआ। लेकिन समय के बाद विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई, परंतु उनको कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तो सत्यवती जो कि वेद व्यास जी की माता जी थी, जो पराशर मुनि के पराशर मुनि और सत्यवती के द्वारा वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, तो वेद व्यास जी को माता ने बहुत आग्रह किया कि तुम अपनी भाभियों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न कराओ। तो क्योंकि वेद व्यास जी बहुत समय तक तपस्या कर रहे थे, तो उनकी वेशभूषा इतनी भयानक थी कि सबसे पहले वो अंबिका के यहाँ पर गए, अंबिका के कक्ष में गए, तो अंबिका उनको देखते ही डर गई, उन्होंने नेत्र बंद कर दिए, जिसके कारण उन्हें धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, अंधे, उनके नेत्रहीन थे। और उसके बाद वेदव्यास जी ने आके अपनी माता से कहा कि क्योंकि अंबिका ने नेत्र बंद कर दिए थे इसलिए उन्हें नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न होंगे। तब माता ने कहा कि आप अंबिका के अंबालिका के कष्ट में जाओ। तो अंबालिका के कक्ष में जब गए तो फिर माता ने उन्हें बोला कि देखो आप नेत्र बंद नहीं करना क्योंकि हमें राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए और उत्तराधिकारी नेत्रहीन नहीं होना चाहिए। तो फिर ना अंबालिका ने नेत्र तो बंद नहीं किए परंतु वो भी बहुत सहम गई और उनका कलर पूरा पीला हो गया था, इसलिए महाराज पांडव उत्पन्न हुए जिनका कलर पीला पीले कलर के थे वो। और उसके बाद सत्यवती ने वेदव्यास जी को कहा कि अंबिका की दासी थी, आप उनके कक्ष में जाइए। तो फिर जब वहां पर गए थे वेदव्यास जी तो उनके द्वारा विदुर जी का प्राकट्य हुआ। विदुर जी जो यमराज के अवतार थे तो वो अंबिका की दासी के यहाँ से उत्पन्न हुए। भले ही वो शूद्र के पुत्र थे परंतु शूद्रानी थी परंतु फिर भी भीष्म पितामह ने जिस प्रकार से पांडव और धृतराष्ट्र की परवरिश की थी उसी प्रकार से विदुर जी की भी परवरिश की थी। वास्तव में पांडव और धृतराष्ट्र दोनों से ज्यादा बुद्धि वाले थे विदुर जी और सदैव सलाह देते थे कि इस तरह से आप मतलब पांडवों के साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। जब पांडव की मृत्यु हो गई थी और उनके पांचों पुत्र युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल इनके साथ और हस्तिनापुर में कोई भी इतनी ज्यादा उनकी सहायता नहीं करता था लेकिन विदुर नीति हमेशा उनकी सहायक होती थी। भीष्म पितामह का आसरा और विदुर के कारण ही वो हर कष्ट से बचते थे क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन इत्यादि सदैव पांडवों को संकट में डालते थे परंतु विदुर जी हमेशा उनकी रक्षा करते थे। उसके बाद समय बीता, फिर भी एक समय ऐसा आया जब पांडवों को जुआ में हरा दिया गया और उसके बाद उनको 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास पर भेजा गया। तो फिर अज्ञातवास समाप्त होने के बाद जब समाप्त हो गया तब भी दुर्योधन ने यही कहा कि नहीं, इनको हमने इनका अज्ञातवास भंग कर दिया। हालांकि भंग नहीं किया था, समय समाप्त हो गया था। तब दुर्योधन को चाहिए था कि वो पांडवों का राज उन्हें वापिस कर दे। उस समय विदुर जी ने उन्हें बहुत समझाया कि अब पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगत लिया है, अब आप उनको उनका राज्य लौटा दीजिए। विदुर की मानी नहीं तो वहां पर यह तय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बन के जाए और धृतराष्ट्र को पांडवों का राज्य उन्हें लौटाने पर एग्री करें। तो फिर जब भगवान श्री कृष्ण गए उस समय बहुत भगवान का अपमान हुआ था सभा में। भगवान ने तो धृतराष्ट्र को कहा कि अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो पूरा राज्य दे दीजिए, अगर अन्याय करना चाहते हैं तो आधा राज्य दे दीजिए पांडवों को, लेकिन अगर आप आधा राज्य भी नहीं देना चाहते तो भी हम युद्ध नहीं चाहते हैं, तो आप भले अगर ये राजा हैं लेकिन अगर आप इनको 5 गांव भी दे दोगे तो भी ये संतुष्ट हो जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, आप इनको 5 गांव दे दीजिए। तब धृतराष्ट्र ने तो उस समय कुछ नहीं बोला परंतु दुर्योधन ने कहा कि देखो वासुदेव, 5 गांव तो बहुत बड़ी भूमि होती है, एक सुई की नोक से जितनी भूमि कुरोदी जा सकती है, सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। और इसके बाद भगवान ने कहा फिर तो युद्ध निश्चित है। वास्तव में भगवान चाहते थे कि युद्ध हो, ये भगवान की इच्छा थी। तो फिर भगवान ने कहा कि फिर तो तुम्हें मरना पड़ेगा। तब दुर्योधन ने कहा है कोई, पकड़ लो इस ग्वाले को, कैद कर दो। और भगवान ने कहा मुझे कैद करना चाहते हो, उस शांति दूत को कैद करना चाहते हो, यदि मुझे कैद करने का साहस कर सकते हो तो आ जाओ और बना दो मुझे बंदी। और उस समय भगवान ने अपना रूप विश्व रूप भी प्रकट किया था, परंतु ये भगवान की इच्छा है, तो उनको कुछ समझ में आया नहीं कि क्या हो रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि भगवान ने दुर्योधन के यहाँ पर भोजन भी नहीं किया, दुर्योधन के यहाँ से वो गए विदुर जी के पास। और उसके बाद युद्ध की तैयारी हो रही थी, लेकिन उस समय विदुर जी ने ये निश्चय किया कि अब मैं हस्तिनापुर की सभा में धृतराष्ट्र महाराज को समझाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर अब मैं उनको कुछ भी समझाता हूँ कि युद्ध नहीं करो, ये नहीं करो, कुछ भी कहूंगा तो ये भगवत इच्छा के विरोध होगा, क्योंकि भगवान की इच्छा है, भगवान की घोषणा है कि अब युद्ध होगा। तो फिर अब उन्होंने जाना बंद कर दिया था, वहां पर जाते नहीं थे। लेकिन एक बार धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलाया विदुर जी को कि आप आओ। विदुर जी की इच्छा थी कि मैं अब हस्तिनापुर के राज्य में ना जाऊं और फिर तीर्थ यात्रा के लिए चला जाऊं, लेकिन वो जाते कैसे, क्योंकि वो महामंत्री थे, वो चाहते थे कि खुद ही मुझे निकाला जाए यहाँ से, खुद ही है ना धृतराष्ट्र दुर्योधन ये सब मुझे निकाल दें ताकि मैं सुख से चला जाऊं। अब मैं ये युद्ध नहीं देख सकूंगा, अपने ही मतलब ये जो परिवार है उसमें युद्ध होगा और रोज मृत्यु होगी, ना मैं उसमें भाग लेना चाहता हूँ और ना मैं ये सब देखना चाहता हूँ, मैं तो यात्रा करने चला जाना चाहता हूँ। तो उस समय धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलाया विदुर जी को कि आप आइए, और कहा धृतराष्ट्र ने कि भगवान आए थे लेकिन ये हुआ कि उनकी बात हमने मानी नहीं, अब आप बताओ क्या करो। ये धृतराष्ट्र पूछते थे यहाँ विदुर जी से, पूछते थे, मान नहीं सकते थे दुर्योधन के कारण या फिर कोई और वजह से, मानते नहीं थे उनकी बात, लेकिन पूछते थे हर दफा, कोई भी बात होती थी वो बोलते थे हाँ विदुर बताओ अभी क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम हो गई, जो भी हो जाता था तो पूछते जरूर थे। तो विदुर ने अब कहा, अब सोचा कि अब मैं इनको सीधी बात बताऊंगा, क्योंकि उनको निकलना था वास्तव में यहाँ से। तो उन्होंने कहा देखो महाराज मैं आपको बात बता दूं कि जब तक दुर्योधन आपके राज्य में है ना तब तक आप हस्तिनापुर का कल्याण होगा ही नहीं, तुम ऐसा करो ये दुर्योधन को धक्के मार के निकाल दो अपने राज्य से। सभी दुर्योधन भी थे वहां पर, और दुर्योधन ने जब सुना कि विदुर ऐसे बोल रहे हैं, तब धृतराष्ट्र को बोलने के लिए कुछ मतलब समय दिया नहीं, और दुर्योधन ने बोला तुमसे ये सलाह मांगी किसने दी, तुम मुझे निकालना चाहते हो, तुम दफा हो जाओ हमारे राज्य से, निकल जाओ यहाँ से। बस यही तो विदुर जी चाहते थे। विदुर जी को दुख नहीं हुआ उनके इस अपमान का, वो बल्कि उनकी इच्छा पूरी हुई, और उन्होंने क्या किया अपना धनुष वहीं पर रखा और ये दिखाया उनको धृतराष्ट्र को कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, मैं तो अब जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे, और वहां पर वो बिल्कुल अवधूत की तरह रहते थे, किसी भी वस्तु की मतलब अवधूत का क्या मतलब होता है, जिसको अपने शरीर की कोई सुध न हो या जिसको अपने शरीर की कोई रक्षा करने के लिए कुछ ना करे। इस संसार में हम देखते हैं हर कोई जीव अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए कार्य करता है, मगर अवधूत जो होते हैं वो मतलब जिनको अपने वस्त्रों की चिंता ना हो, जो अपने बालों की अपने शरीर की कोई चिंता ना करे, वो ऐसे ही रहते थे, कुछ भी नहीं था, राज्य परिवार में पहले रहते थे और अब वो ऐसे जैसे पशु जीते हैं जहाँ नींद आती थी सर ऐसे ही जमीन पर सो जाते थे, जो उनको मिलता था कंदमूल इत्यादि वो खा लेते थे। ऐसे करते करते जब वो प्रभास में पहुंचे तो उन्हें ये पता चला कि भगवान इस संसार से चले गए हैं, अपनी लीला समाप्त करके चले गए हैं, और जितना भी यदुवंश है वो सब चले गए हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया है, सारे कौरव और सब जितने भी पांडव थे वो सब चले गए हैं। तो उनको बहुत दुख हो रहा था, बहुत रो रहे थे, और ऐसे रोते रोते अभी उसने सोचा कि द्वारिका में तो कोई होगा नहीं क्योंकि भगवान भी चले गए थे, फिर उसने सोचा कि अब मैं कहाँ जाता हूँ, वृंदावन जाता हूँ जहाँ पर भगवान ने लीला की थी। तो वृंदावन में गए यमुना के तट पर, वहां पर उनकी मुलाकात हुई उद्धव जी से। उद्धव को देखते वो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उद्धव भगवान के मित्र थे और उनको देख के उनको भगवान कृष्ण की याद आ गई। बहुत रो रहे थे, उनको गले लगाया और उनसे बहुत पूछ, हालांकि उन्हें पता था कि अब भगवान नहीं रहे, फिर भी वो पागलों की तरह पूछ रहे थे, उद्धव बताओ उद्धव कृष्ण कैसे हैं, बलराम जी कैसे हैं, कृष्ण की सारी पत्नियां कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, कौरव सब कैसे हैं, सब पूछ रहे थे। तो फिर उद्धव ने उनको बताया सब जो कुछ हुआ उसके विषय में बताया, और उन्होंने कहा कि अब मैं भद्रिका आश्रम जा रहा हूँ क्योंकि कृष्ण ने जाते समय मुझे ज्ञान दिया है और वो ज्ञान प्राप्त करके अब मैं संतुष्ट हूँ और भगवान की तपस्या करने के लिए भद्रिका आश्रम जा रहा हूँ। तो फिर उद्धव को विदुर जी ने कहा फिर आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे वो ज्ञान बताइए जो भगवान ने आपको दिया था। परंतु उद्धव ने कहा भगवान जिस समय मुझे ज्ञान दे रहे थे उस समय वहां पर मैत्रेय मुनि भी थे और भगवान ने मैत्रेय मुनि को ये आदेश दिया है कि वो आपको ज्ञान दे, तो इसलिए मैं इतनी धृष्टता नहीं कर सकता, मैं आयु में भी आपसे छोटा हूँ, ज्ञान में भी आपसे छोटा हूँ, भक्ति में भी आपसे छोटा हूँ, तो मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा, मैं तो जा रहा हूँ बद्रिका आश्रम, आप जाइए मैत्रेय मुनि के पास और मैत्रेय मुनि आपको वो सब ज्ञान प्रदान करेंगे जो भगवान ने हमें साक्षात दिया है। फिर विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए और मैत्रेय मुनि से बहुत सारे प्रश्न किए उन्होंने, जिनका उन्होंने उत्तर दिया, और उसके बाद क्या हुआ वो सब हम आगे पढ़ेंगे। जब यहाँ हम अभी पहला स्कंद पढ़ रहे ना, तीसरे और चौथे स्कंद में मैत्रेय और विदुर का संवाद है, लेकिन उस संवाद के बाद जब मैत्रेय मुनि ने उनको पूरा ज्ञान दे दिया और फिर उनका मन जो है वो कृष्ण चरणों में स्थित हो गया, उसके बाद भी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं विदुरस्तीत यात्राणाम मैत्रेयादास्तम मैत्रेयादात्मनोगतिम, कि विदुर जब तीर्थ यात्रा कर रहे थे उस समय मैत्रेय मुनि से जब उनकी भेंट हुई और आत्मनोगतिम, यानी कि आत्मनोगतिम का मतलब होता है आत्मा की एकमात्र गति, विदुर को मैत्रेय मुनि ने आत्मा की गति के विषय में ज्ञान दिया कि आत्मा की वास्तविक गति क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना। जीव का जीने का मकसद ये नहीं है कि वो केवल घूमता रहे, जीव का वास्तविक डेस्टिनेशन क्या है, भगवान के चरणों को प्राप्त करना। तो मैत्रेय विदुर तीर्थ यात्रा, विदुर का मतलब होता है विदुर ने तीर्थ यात्रा, विदुर विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए मैत्रेय मैत्रेय मुनि से आत्मना गतिम अपनी यानी स्व की गंतव्य के विषय में ज्ञातवा जाना। जब उन्होंने जान लिया तो वो कहाँ गए आगे बताए, आगात हस्तिनापुरम, आगात मतलब वापस लौट आए हस्तिनापुर में। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जब उनको अपनी आत्मा की गति का वास्तविक लक्ष्य पता चल गया, वास्तविक आत्मा का डेस्टिनेशन पता चल गया, तो फिर वो वापस हस्तिनापुर में क्यों आए, वो क्यों आए, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को ज्ञान देना चाहते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र अभी तक राज्य में वहीं पर रह रहे थे, वहां पर उन्हें अब नहीं रहना चाहिए था और उन्हें अब तपस्या करने के लिए चला जाना चाहिए था। तो ये क्योंकि अपने बड़े भाई की तरह मानते थे उनको, तो ये अपना कर्तव्य समझ रहे थे, इसलिए वो वापस से यहाँ हस्तिनापुर में आए। तया वाप्त विवेचता, मतलब अब उनको प्रत्येक वस्तु जिसके विषय में वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे उनको मैत्रेय मुनि ने संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया था, और विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और उन्होंने किस प्रकार से उनको ज्ञान दिया है और कैसा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया वो हम आगे सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।